वैक्रीकानन्तरं यदुपदिष्टं तस्य स्वरूपनिर्धारणार्थं स्वामिनिर्देशार्थं च आह। वैक्रीक के आगे जो उपदिष्ट है यानी औदारिक वैक्रीयक और उसके आगे आहारक नाम का जो शरीर उपदिष्ट है तस्य उसके स्वरूप का निर्धारण यानी निश्चय करने के लिए और स्वामी निर्देशार्थम और स्वामी की जानकारी के लिए कहते हैं शुभम विशुद्धमव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव शुभ कारणत्वात् शुभ व्यपदेशः शुभ कर्मणः आहारक काय योगस्य कारणत्वात् शुभमिति उच्यते अन्नस्य प्राण व्यपदेशवत्। आहारक शरीर का कारण शुभ अर्थात पुण्य होता है यानी पुण्य के परिणाम स्वरूप आहारक शरीर होता है इसलिए उसको शुभ कहते हैं यानी शुभ कर्म के अर्थात आहारक काय योग के कारण से होने के कारण शुभम इति उच्यते शुभ इस प्रकार कहा जाता है। जैसे अन्न को प्राण बोलते हैं क्यों क्योंकि अन्न से प्राण स्थिर रहते हैं इसलिए अन्न को भी प्राण बोल देते हैं। फिर विशुद्ध कार्यत्वात् इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा ये जो पहली पंक्ति थी वो शुभ कारणत्वात् शुभ व्यपदेश यहां पर ये वो वाला अर्थ नहीं लगाना अर्थ ये लगाना कि शुभ का कारण होने से शुभ व्यपदेश है। शुभ का कारण कौन आहारक शरीर। आहारक शरीर जो होता है वो अच्छे काम करता है शुभ कार्य करता है इसलिए शुभ कर्मण आहारक काय योगस कारणत्वात् शुभ कार्य जो आहारक काय योग है उसका कारण होने से शुभम इति उच्यते। वो जो आहारक शरीर मुनि के मस्तक से निकलता है वो शुभ कहा जाता है। जैसे अन्यस्य प्राण व्यपदेशवत् अन्न जो है वो प्राण को कायम रखता है इसलिए अन्न को प्राण बोलते हैं। वैसे आहारक शरीर शुभ कार्य करता है इसलिए आहारक शरीर को शुभ कहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं विशुद्ध कार्यत्वात् विशुद्ध व्यपदेश है और विशुद्ध यानी पुण्य उस पुण्य का कार्य होने से इसको विशुद्ध नाम दिया गया है। विशुद्धस्य पुण्य कर्मणः अश्वलस्य निरवध्यस्य कार्यत्वात् विशुद्ध जो पुण्य कर्म है अशबल शबल का अर्थ होता है चित कबरा रंग बिरंगा पुण्य जो है बिल्कुल स्वच्छ है उसमें अलग अलग प्रकार के काले पीले रंग नहीं है धब्बे नहीं है तो शबल यानी धब्बे वाला और अशबल यानी स्वच्छ। निरवध्यस्य निर्दोष जो पुण्य कर्म है उसका कार्य होने से पुण्य का कार्य कैसे होगा पुण्य के उदय से होगा इसलिए विशुद्धमिति उच्यते विशुद्ध इस तरह कहा जाता है। तंतूनाम कार्पासव व्यपदेशवत् तंतुओं को कपास संज्ञा दी जाती है क्योंकि कपास का कार्य है तंतु कपड़े जो है ना बोले कि क्या है बोले कॉटन है तो कॉटन है कॉटन तो अलग चीज होती है जो वहां से मिलता है बगीचे से या खेत से लेकिन उसका कार्य होने से इस कार्य को भी कॉटन बोल देते हैं। जिसके कपड़े कॉटन के हो उसकी बात है जिसके दूसरे हो तो फिर अलग बात है। तो तंतु नाम कार्पास व्यपदेशवत् जैसे तंतुओं को भी कपड़ों को भी कपास नाम दिया जाता है उसी प्रकार ये आहारक शरीर जो है वो पुण्य का फल है इसलिए इसको भी विशुद्ध अर्थात पुण्य रूप कहा जाता है। मैंने दो बातें हो गई शुभ और विशुद्ध। शुभ का अर्थ होता है इसका कार्य शुभ है और विशुद्ध का अर्थ इसका कारण शुभ है ऐसा। उभय तो व्याघाताभावाद अव्याघाती दोनों तरफ से व्याघात का अभाव होने के कारण अव्याघाती आहारक शरीर अव्याघाती होता। व्याघात यानी टक्कर ये भी किसी को टक्कर नहीं मारता और कोई दूसरा भी इससे नहीं टकरा सकता, इसलिए अव्याघाती ये नाम हो गया। न ही आहारक शरीरेण अन्यस्य व्याघात नाप्यन्ने न आहारक कस्येति, आहारक शरीर द्वारा अन्य का व्याघात नहीं होता और अन्य द्वारा आहारक शरीर का व्याघात नहीं होता। तस्य प्रयोजन समुच्चयार्थ च शब्द क्रियते, आहारक शरीर का जो प्रयोजन है उसको इकट्ठा करने के लिए, बहुत सारे काम होते हैं उसको संग्रहित करने के लिए च ये बीच में शब्द दे दिए हैं। तद यथा वो इस प्रकार है, कदाचित लब्ध विशेष सद्भावा भावक ज्ञापनार्थम, किसी समय आहारक शरीर इस उद्देश्य से निकलता है कि मेरे पास कौन सी रिद्धियां हैं ये पता तो करूं। तो मुनि महाराज जब ध्यान में बैठे या फिर ऐसे सामान्य रूप से विचार कर रहे हैं कि मेरे पास कौन सी रिद्धियां हुई होंगी, तो उसी समय आहारक शरीर यहां से निकल करके पता लगा लेता है कि कौन सी रिद्धियां हैं और फिर जानकारी दे देता है। कदाचित किसी समय सूक्ष्म पदार्थ निर्धारणार्थम, कोई सूक्ष्म पदार्थ है शास्त्रों में उसका निश्चय करने के लिए आहारक शरीर निकल पड़ता है, और कभी संयम परिपालनार्थम च, संयम की रक्षा कैसे हो इस बात को जानने के लिए भी आहारक शरीर निकल पड़ता है। आहारकमिति प्रागुक्तस्य प्रत्याम्नायः, पहले कहा गया है आहारक, तो पहले कहा हुआ जो आहारक है वो पहले कहे हुए के प्रत्याम्नाय माने उसकी पुनरावृत्ति जैसी है। यदा आहारक शरीरम निर्वर्तयितुम आरभते, जब आहारक शरीर की रचना करना प्रारंभ करते हैं तदा तब प्रमत्तो भवति, तब मुनि जो है वो सातवें गुण स्थान में नहीं रह सकते, प्रमत्त होते हैं यानी छठे गुण स्थान में आ जाते हैं। इति इसलिए प्रमत्त संयतस्य इति उच्यते, प्रमत्त संयतस्य यानी प्रमत्त संयत मुनि के होता है आहारक शरीर ऐसा कहा जाता है। इष्टतोवधारणार्थम एव कारोपादानम, इष्ट का निश्चय करने के लिए एव प्रमत्त संयतस्य एव ऐसा निकलेगा विग्रह, तो उसको यहां पर स्वीकार किया गया है। यथैवं विज्ञायेत, जिस प्रकार ऐसा जाना जा सकता है कि प्रमत्त संयतस्यैव आहारकम न अन्यस्य इति, जिससे ये बात जानी जा सकती है कि प्रमत्त संयत मुनि के ही आहारक शरीर हो सकता है, अन्य किसी के भी नहीं। मैवम विज्ञाय, ऐसा नहीं समझ लेना कि प्रमत्त संयतस्य आहारकमेव इति, प्रमत्त संयत मुनि के पास आहारक ही शरीर होता है, ये ही जो है आहारक के साथ नहीं लगाना, ही प्रमत्त संयत के साथ लगाने का। माभूद औदारिक आदि निवृत्ति रीति, उससे फिर औदारिक आदि की निवृत्ति हो जाएगी, तो औदारिक के बिना कैसे मुनि पद रहेगा, तो औदारिक शरीर जरूरी है और फिर उसमें से फिर आहारक शरीर निकलता है मस्तक से, इसकी चर्चा कहीं दी है पहले। पांच प्रकार के शरीरों में कौन सा सूत्र है पांच शरीरों वाला, सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञानार्थम असंयम परिजिही रक्षया वा प्रमत्त संयतेन आह्रियते निर्वर्त्यते तत् इति आहारकम्, इतना ही दिया है कि सूक्ष्म पदार्थ की जानकारी के लिए और असंयम का परिहार करने की इच्छा से जो प्रमत्त संयत मुनि द्वारा आह्रियते रचा जाता है तत्, इसलिए आहारक शरीर कहलाता है। मैंने इसका खुलासा अन्य ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि इधर मस्तक से प्रमत्त संयत मुनि के एक हाथ का एक मनुष्याकार प्रकट होता है जो शुभ लेशियाओं वाला और स्वच्छ होता है, और फिर जो उनके अंदर में कोई भी शंका उत्पन्न हुई है, कोई जिज्ञासा हुई है कुछ जानने की कि संयम की रक्षा कहाँ जाने पर होगी, पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, किस दिशा में, तो उस जानकारी के समाधान प्राप्त करने के लिए यहाँ से वो आकार निकलता है। ये एक प्रकार का समुद्घात है, विक्रिया नहीं है लेकिन एक प्रकार का समुद्घात है, एक ऐसे शरीर की रचना हो जाती है और वो शरीर यहाँ से ऐसे जाता है, चला जाता है, और फिर ढाई द्वीप में जहाँ कहीं भी कोई केवली श्रुत केवली या रिद्धिधारी साधु कोई भी हो तो उनके पास जाकर के समाधान लेकर वापस आ जाता है, और वो जाता है अनुश्रेणी से है, विश्रेणी गति नहीं होती आहारक शरीर की। तो जाते समय अगर रास्ते में कोई भी नहीं मिले एक पंक्ति में, तो फिर वो मानुषोत्तर पर्वत के पास जाकर के रुक जाता है, और फिर उस शरीर में से फिर नया आहारक शरीर और निकलता है, और फिर वहां से वो और दूसरे स्थानों पर जाता है। ऐसे अंतर्मुहूर्त तक के प्रमत्त संयत गुणस्थान का जितना उत्कृष्ट काल है, उतने काल के भीतर वो समाधान कहीं ना कहीं से लेकर के आ ही जाता है। ऐसा रहता है आहारक शरीर का हिसाब। धवला की 8वीं पुस्तक में इसका विशेष विस्तार हुआ। वो सब क्या मालूम कैसे होता है, वो तो भगवान के वचन है। अव्याघाती है ना, टकराएगा नहीं। अब अगर वहां जाकर के फिर वापस लौटे तो फिर वो टकराना माना जाएगा ना। मानुषोत्तर पर्वत से ऐसे टकराया फिर वापस लौट गए, तो वहां टकराए वहां रुक जाएगा, बस मानुषोत्तर पर्वत के आगे जाना नहीं, और उसमें से फिर दूसरा आकार निकल करके फिर वो अपना काम करेगा, वो विलीन हो जाएगा वहीं। ऐसा जो अभी बहुत सारी बातें पूछना है, भगवान जब मिले तब देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है स्पष्ट, हाँ पूछना ही नहीं पड़ेगा। ये भी हमारे मन में अब भी आया था बिल्कुल, कि वहां तो बस सीधा आनंद लो बस भगवान। एवं विभक्तानि शरीराणि बिभ्रताम संसारिणाम, इस प्रकार विभाजित किए गए जो शरीर है उनको धारण करने वाले संसारी जीवों के प्रतिगति किं त्रिलिंग सन्निधानम उत लिंग नियम कश्चित अस्ति इति अत आह। क्या हर गति में तीनों लिंगों का सन्निधान होता है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग चारों गतियों में हो सकते हैं, या फिर लिंग संबंधी कोई नियम होता है? तो अस्ति आचार्य कहते हैं होता है। इति अतः इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं, नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि नारकाणि वक्षन्ते, नारक जो है उनके बारे में नरकाणि वक्षन्ते, नरकों के बारे में कहेंगे। नरकेषु भवा नारकाः, नरकों में पैदा होने वाले नारक हैं। सम्मूर्छनं सम्मूर्छः स येषाम् अस्ति ते सम्मूर्छिनः। सम्मूर्छन यानी सम्मूर्छः, चारों तरफ से परमाणुओं को ग्रहण करके शरीर रचना करना, वो जिनका जन्म होता है ते सम्मूर्छिनः, वो सम्मूर्छिन जन्म कहलाते हैं। नारकाश्च सम्मूर्छिनश्च, नारक सम्मूर्छिन द्वंद्व समास कर दिया, यानी ये दो प्रकार के प्राणी। चारित्र मोह विकल्प, चारित्र मोहनी कर्म, देखो मोहनी कर्म के 28 भेद हैं, 28 में से 3 दर्शन मोहनी है, 25 चारित्र मोहनी है। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियों में 16 कषाय हैं और 9 कषाय हैं। तो उनमें जो विकल्प है 9 कषाय भेदस्य, तो 9 कषाय के जो भेद हैं, नपुंसक वेदस्य अशुभ नामनश, नपुंसक वेद नाम का कोई अशुभ कर्म है उसके च उदयात न स्त्रियो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति। न स्त्री रूप हो जाता है वो, न पुरुष होता है, इसलिए नपुंसक होते हैं। कौन? तो नारक सम्मूर्छन नपुंसकान्ये वेति नियम, नारक और सम्मूर्छन जीव तो नियम से नपुंसक ही होते हैं। तत्र ही, क्योंकि वहां पर स्त्री पुंस विषय मनोज्ञ शब्द गंध रूप रस स्पर्श संबंध निमित्ता स्वल्पापि सुख मात्रा नास्ति। स्त्री पुरुष के विषय में होने वाले जो मनोज्ञ शब्द, मनोहर ध्वनियां, गंध रूप रस स्पर्श से के संबंध का निमित्त रखने वाले सुख की मात्रा स्वल्पापि नास्ति, थोड़ी भी नहीं है नरकों में। इसलिए और सम्मूर्छन जीवों में भी नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आगम वचन है, नरकों में तो नहीं है ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन यहाँ आगम का कथन है कि सम्मूर्छन जीवों में भी ये स्त्री पुरुष संबंधी सुख की मात्रा तनिक भी नहीं होती, इसलिए वो नपुंसक ही होते हैं। यद्देवमावध्रियते अर्थादापन्नमेतद् दुक्तेभ्योऽन्ये संसारण स्त्रीलिंगा इति यत्रात्यंतं नपुंसकलिंगस्याभावस् तत्प्रतिपादनार्थमः। यदि ऐसा निश्चय कर लेते हैं तो फिर अर्थात उसके अर्थ से माने पारिशेष न्याय से ऐसा निकल जाएगा, एतद् उक्तेभ्योऽन्ये, ये जो दो कहे गए हैं जीव नारक और सम्मूर्छन, इन जीवों से अन्य जितने जीव होंगे संसारी त्रिलिंगा तीन लिंग वाले हो जाएंगे। इसलिए जहाँ नपुंसक लिंग का अत्यंत अभाव होता है यानी नपुंसक लिंग होता ही नहीं है, उनका प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं न देवाः, देव नपुंसक नहीं होते। स्त्रैणं पौंसनञ्च यत् निरतिशय सुखम्, स्त्री और पुरुष संबंधी जो निरतिशय यानी एक समान सुख होता है, शुभ गति नामोदयापेक्षम, जो शुभ गति नाम कर्म के उदय की अपेक्षा रखने वाला होता है, तद देवा अनुभवन्ति, उसका अनुभव देव करते हैं। इति इसलिए नतेषु नपुंसकानि संति, उनमें नपुंसक नहीं हो सकते। अथेतरेकीय लिंगा इति यथा, फिर बाकी जो बच गए तिर्यंच और मनुष्य, उनमें कितने लिंग हो सकते हैं, कितने लिंग वाले हो सकते हैं वो, तो आचार्य कहते हैं शेषास त्रिवेदाः, बाकी बच गए वो सब तीन वेद वाले होते हैं। त्रयो वेदा ये शांत त्रिवेदा, तीन वेद हैं जिनके वो त्रिवेद कहलाते हैं। के पुनः वेद ते वेदा, वे वेद कौन से हैं, स्त्रीत्वम पुंसत्वम नपुंसकत्वम इति, स्त्रीपना पुरुषपना और नपुंसकपना, इस प्रकार तीन। कथम तेषां सिद्धि, उनकी सिद्धि कैसे हो सकती है, तो कहते वेद्यते इति वेदः, वेदन जिसका किया जाता है वो वेद कहलाता है, लिंगम इत्यर्थ उसको लिंग कहते हैं। तत् द्विविधम, वो दो प्रकार का है, द्रव्यलिंगम भावलिंगम चेति, द्रव्यलिंग और भावलिंग। द्रव्यलिंगम, द्रव्यलिंग क्या है, योनि मेहन आदि नाम कर्मोदय निर्वर्तितम, योनि मेहन आदि जो नाम कर्म के उदय से रचित है शरीर की आकृतियां हैं वो। नो कषाय उदयापादित वृत्ति भावलिंगम, नो कषाय के उदय से आपादित वृत्ति, प्राप्त होने वाली वृत्ति या प्रवृत्ति भावात्मक, वो भावलिंग है। स्त्री वेदोदयात स्त्यायत्यस्यां गर्भ इति स्त्री, स्त्री वेद के उदय से जो स्त्यायति अस्यां गर्भ, इसमें गर्भ को रखती है सुरक्षित करती है, वो स्त्री कहलाती है। शब्द की व्युत्पत्ति है क्योंकि देवों में तो कुछ होता नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी शब्द इस प्रकार से बन गया स्त्री शब्द, यानी जिसमें गर्भ धारण की क्षमता रहती है उसको स्त्री कहते हैं शब्द की अपेक्षा से। पुंवेदोयात् सूते जनयति अपत्यम इति पुमान, पुरुष वेद के उदय से जो लड़का पैदा करता है वो पुमान पुरुष कहलाता है। ये भी शब्द की व्युत्पत्ति मात्र है क्योंकि देवों के यहाँ कोई बाल बच्चे नहीं होते, यद्यपि अंबिका का चिन्ह माना जाता है कि एक बच्चे को पास में रखी है जो देवी, सो अंबिका है, ये एक चिन्ह रहता है, लेकिन देव गति में संतान उत्पत्ति वाली स्थिति औदारिक शरीर के अभाव में बनती नहीं। नपुंसक वेदोदयात, नपुंसक वेद के उदय से, तदुभय शक्ति विकलम, इन दोनों प्रकार की शक्तियों से रहित नपुंसकम, रूढ़ी शब्दाश्चैते, ये शब्द जो है रूढ़ी शब्द है, रूढ़ी शुच क्रिया व्युत्पत्त्यर्थ है, व्युत्पत्त्यर्थ क्या लिखा है, व्युत्पत्त्यर्थैव, ठीक है, रूढ़ी में और क्रिया, क्रिया व्युत्पत्ति एक साथ है या क्रिया अलग है, वास्तव में तीनों रौढ़िक शब्द है और रूढ़ी में क्रिया व्युत्पत्ति के लिए ही होती है। ये जो क्रिया बनाई ना स्त्यायति इति स्त्री और सूते इति पुरुष पुमान, ये जो क्रिया बनाई इन्होंने ये सिर्फ रूढ़ी के कारण बनाई है। यथा जैसे गच्छति इति गौरिति, जो चले सो गाय है, इतरा था ही, अब चले सो गाय, बैठ जाए गाय तो गाय नहीं रहेगी क्या, लेकिन वो सिर्फ शब्द की व्युत्पत्ति बताई है, बैठने पर भी गाय रहती है, वैसे देव भी, देवों में भी स्त्री और पुरुष होते हैं, इतरता ही, क्योंकि अन्यथा ऐसा नहीं मानने पर गर्भधारणादिक क्रिया प्राधान्य, गर्भधारणादिक की जो क्रिया है उसकी प्रधानता अगर ले लें तो बाल वृद्धानाम तिरेंग मनुष्याणाम, बच्चे और वृद्ध जो तिरेंच और मनुष्य हैं, और देवानाम और देवलोक जो हैं उनमें कार्मण काय योगावस योगस्थानाम, अथवा जो कार्मण काय योग में स्थित हैं उनमें तदभावात इन क्रियाओं का अभाव होता है, और अभाव होने के कारण स्त्रीत्वादि व्यपदेशो न स्यात्, स्त्रीवेद आदि का अभाव हो जाएगा, बनेगा नहीं वहां पर, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए ऐसा समझ लेना कि ये जो शब्दों का निर्माण किया गया है वो सिर्फ व्याकरण से ऐसे कर दिया है, साक्षात क्रिया होना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। तयते त्रयो वेदा शेषाणाम गर्भजानाम भवन्ति, ये तीन प्रकार के वेद शेष जो गर्भज प्राणी हैं, क्योंकि सम्मूर्छन बतला दिए, अब बचे कौन, देवों की भी बात हो गई, नारकों की भी बात हो गई, अब बचे कौन, तो गर्भ से जन्म लेने वाले मनुष्य और तिरेंच, तो इनके तीनों वेद हो सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि तीन वेद में भोग भूमिया जीव जो रहते हैं उनमें सिर्फ स्त्री और पुरुष वेद होते हैं, नपुंसक वेद भोग भूमियों में नहीं पाया जाता, कर्म भूमियों में ही होता है। अब इसके आगे का जो सूत्र है, अंतिम सूत्र है दूसरे अध्याय का, बड़ा सुंदर है। ये इमें जन्म योनि शरीर लिंग संबंधाहित विशेषाः प्राणिनो निर्दिश्यन्ते, जो यह जन्म योनि शरीर लिंग इन सब के संबंध से आहित तन्मय विशेषाः भेद वाले प्राणी निर्दिश्यन्ते निर्दिष्ट किए जाते हैं, देवादयो देव आदि, वे विचित्र धर्माधर्म वशीकृताश, अनेक प्रकार के पुण्य और पाप के वशीभूत होते हैं, और चतस्रिषु गतिषु चारों गतियों में शरीराणि धारयन्तस शरीरों को धारण करते हुए ते किं वे क्या यथाकाल उपभुक्तायुषो, यथाकाल आयु का उपभोग करके मूर्तन तराणि आस्कंदन्ति अन्य शरीरों को प्राप्त करते हैं, उत अथवा अयथाकालम अपि इति यतः, या अयथाकाल भी आयु का उपभोग करके नए शरीरों को प्राप्त होते हैं। आगे इन शंका समझ में, ये सारे जीव जब नए शरीरों को धारण करते हैं तो यथाकाल आयु को भोग करके जाते हैं या फिर अयथाकाल जाते हैं, तो उसका समाधान करने के लिए अगला सूत्र है, औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिका व्याख्याता देव नारकः, औपपादिक का अर्थ देव और नारक, फिर चरम शब्द अंत्यवाची, चरम का मतलब अंतिम, उत्तम उत्कृष्ट, उत्तम का अर्थ उत्कृष्ट होता है, चर्मो उत्तमो देहो ये शांति चरम उत्तम देह, चरम और उत्तम शरीर वाले चरम उत्तम देह कहलाते हैं। परीत संसारास, जो परीत संसार माने संसार के बिल्कुल पार लगने वाले हैं, ऐसे तज्जन्म निर्वाण आरहा इत्यर्थ है, उसी जन्म से निर्वाण के योग्य हैं, ये इसका अर्थ हो गया। असंख्येय मतीत संख्यानम उपमा प्रमाणेन पल्यादिना गम्यम आयुर्येषां तैमे असंख्येय वर्षायुषास, असंख्येय वर्षायुषस, असंख्येयम अतीत संख्यानम, असंख्येय का मतलब क्या है, ये संख्या से परे हैं, उपमा प्रमाणेन जिनको उपमा के प्रमाण द्वारा पल्यादिना पल्य आदि द्वारा गम्य में आयु रही शांति, जिनकी आयु पल्य अधिक में मापी जाती है, और कोई गिनती का साधन नहीं है कि इतने वर्षों की आयु है इतने समय की आयु, पल्यों में चलती जिनकी आयु, वे असंख्य वर्षायुष कहलाते हैं। तिरंग मनुष्य, वो तिरंच और मनुष्य दोनों होते हैं, उत्तर कुरुवादिशु प्रसूता, उत्तर कुरु देव कुरु अधिक भोग भूमियों में जिनका जन्म हुआ है वे। तो क्या हुआ, औपपादिक, औपपादिक का मतलब देव नारक, फिर चरमोत्तम देह माने उसी भाव से मोक्ष के योग्य, और फिर असंख्य वर्षायु माने भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य और तिरेंच। औपपादिकाश्च चरमोत्तम देहाश्च असंख्य वर्षायुषश्च, औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्य वर्षायुषः, ये समास कर दिया, द्वंद्व समास। बाह्योपघात निमित्त विशेषस्त्रादेह सति सन्निधाने ह्रस्वम भवति इति अपवर्त्यम्, जो बाह्य उपघात के निमित्त भूत विष और शस्त्र आदि का संनिधान होने पर ह्रस्वम भवती घट जाती है, उस आयु को अपवर्त्य आयुष कहते हैं। अपवर्त्यम आयुर्ये शांति इमे अपवर्त्य आयुष, जिनकी आयु ऐसे जहर आदि के माध्यम से घट जाए, नष्ट हो जाए, तो वो अपवर्त्य आयुष कहलाते हैं। न अपवर्त्य आयुष अनपवर्त्य आयुष। लेकिन इस सूत्र में क्या बतलाना चाह रहे हैं कि जिनकी आयु नहीं घटती वो कौन? अनपवर्त्य आयुष। न ये शाम औपादिकादि नाम बाह्य निमित्त वशात आयुर अपवर्त्यते, इन औपादिक आदिक जो जीव हैं संसार के उनके बाह्य निमित्त के प्रभाव से आयु अपवर्तित नहीं होती। इत्यम नियम, ऐसा ये नियम बन गया। इतरेशाम नियम, बाकी जीवों के लिए नियम नहीं रहा, उनकी आयु अपवर्तित हो भी सकती है न भी हो, लेकिन इन जीवों के लिए नियम से आयु अपवर्तित नहीं होगी। चरम देह चर्मस्य देहस्य उत्कृष्टत्व प्रदर्शनार्थम उत्तम ग्रहणम नार्थांतर विशेषोस्ति। चरम देह में जो उत्कृष्टता होती है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर उत्तम शब्द का ग्रहण किया गया है, कोई दूसरा अर्थ बतलाने के लिए नहीं, कोई और दूसरा भेद मत निकालना उसमें से। चरम देहा इति वा पाठः, और चरम देह ऐसा भी पाठ उस समय पांचवी शताब्दी में उपलब्ध था, इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख दिया कि चरमोत्तम देहा की तो हमने टीका कर दी है, लेकिन चरम देहा ऐसा भी पाठ कहीं किसी शास्त्र भंडार में उपलब्ध है। इति तत्वार्थ वृत्तो सर्वार्थ सिद्धि संघनिकायाम द्वितीय अध्याय, इस प्रकार तत्वार्थ वृत्ति जो कि सर्वार्थ सिद्धि नाम को प्राप्त है उसका दूसरा अध्याय यहां पर पूर्ण होता है। कोई अंतर नहीं है। चर्मस्य देहस्य उत्कृष्टत्व प्रदर्शनार्थम, चर्म शरीर उत्कृष्ट होता है इसको दर्शाने के लिए चर्मोत्तम कह दिया है। इसमें इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि चर्मोत्तम यानी तीर्थंकर या जो भी तद्भव मोक्षगामी बलराम आदि हैं वो, ऐसा इसमें टीका में कहीं नहीं लिखा सर्वार्थ सिद्धि में। खैर इसमें अपन पंडित फूलचंद जी ने जो काम किया है इस सूत्र के ऊपर उसकी अगर अपन झलक देख लें थोड़ी सी, जो ये देवादिक प्राणी जन्म योनि शरीर और लिंग के संबंध से अनेक प्रकार के बतलाए हैं, वे विचित्र पुण्य और पाप के वशीभूत होकर चारों गतियों में शरीर को धारण करते हुए यथाकाल आयु को भोग कर अन्य शरीर को धारण करते हैं, या अब ये आगे ये वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, मिल गई सूत्र के ऊपर, सूत्र का जो अर्थ है ना हिंदी में उसके ऊपर देखो, सूत्र का अर्थ विशेषार्थ नहीं मिला, जो मोटे काले अक्षरों में है 53वें सूत्र का अर्थ उसके ऊपर देखो क्या लिखा है, जो ये देवादिक प्राणी, मिल गया। अब उसमें शरीर को धारण करते हैं ऐसा एक शब्द आया वाक्य, या देखा, या पढ़ा आपने। अब उसके आगे की लाइन देखिएगा, आयु को पूरा न करके भी, ये जो वाक्य लिखा है ये सारे जैन आगम में कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि जैन आगम में आयु को पूरा किए बिना कभी मरण नहीं होता। ये पंडित जी ने अकाल मरण वाली बात जो इसमें सूत्र में ऊपर टीकाकार ने लिखी, यथाकालम अयथाकालम अपीति लिखा ना ऊपर, वो अयथाकाल शब्द को यथावत न रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, आयु को पूरा न करके भी, क्योंकि अयथाकाल शब्द लिखने में वो जो एक मान्यता चल रही है अभी वर्तमान में अपनी जैन समाज में कि जो भी मरण होता है वो केवली ने जब जाना है तभी होता है, इसलिए वो अकाल मरण नहीं है निश्चय से, ऐसा उनका मत है। तो उस मत को सुरक्षित रखने की अपेक्षा से, या फिर जो भी पंडित जी की भावना रही हो उस अपेक्षा से, उन्होंने अनुवाद में ये मूल से परिवर्तन कर दिया। स्पष्ट समझ में आ रहा है आपको, यहां ऊपर में क्या लिखा है, आह लिखा है एक आखिरी शब्द सूत्र के ऊपर, आह के पहले वाला शब्द देख लो, उतायात उता यथा कालम अपि इति आह इति अतः, उत अलग निकलेगा, फिर अयथा कालम ये एक शब्द निकलेगा, फिर अपि निकलेगा, फिर इति निकलेगा, फिर अतः निकलेगा। आया समझ में? तो अयथाकाल जो शब्द था उसको नीचे में अनुवाद में न लिख करके उन्होंने क्या लिख दिया, आयु को पूरा न करके भी। अब ये बात वास्तव में विचारणीय है कि इतने बड़े विद्वान, हिंदुस्तान में प्रथम श्रेणी के विद्वान थे, लेकिन एक बस